नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बस्तर ओलंपिक मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने दिया संदेश, कहा जहां कभी गोलियां गूंजती थी वहां अब स्कूलों की घंटियां बजती हैं। प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई में आईएसआईएस से जुड़े साकिब नाचन केस में 40 ठिकानों पर छापेमारी और 25 बैंक खाते फ्रीज किए गए। निर्वाचन अधिकारी एल कुमार ने द्वीपों के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों से फॉर्म 6 अनिवार्य घोषणा पत्र के साथ जमा करने की अपील की और पर्यटन निदेशालय ने न्यू वंडूर बीच पर ग्लास बॉटम बोट और पैरासेलिंग गतिविधियां शुरू करने की घोषणा की। सुबह के समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि नक्सलवाद से किसी को लाभ नहीं होता और केवल शांति ही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल को देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। श्री शाह ने कहा कि उग्रवाद ने इस क्षेत्र में विकास को बाधित किया है, लेकिन इसके उन्मूलन के बाद प्रगति का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। उन्होंने प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े लोगों से हथियार डालने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील भी की। बस्तर के बदलते स्वरूप का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि डर की जगह आशा ने ले ली है। उन्होंने कहा कि जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी वहां अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं और जहां विकास कभी एक सपना था वहां अब सड़कें, रेल और राजमार्ग बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अगला बस्तर ओलंपिक आयोजित होगा तब तक न केवल बस्तर बल्कि पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका होगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू और विजय शर्मा तथा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया भी उपस्थित थे। ओलंपिक में सभी 7 जिलों के लगभग 3,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली और उग्रवादी हिंसा से प्रभावित लोग शामिल हैं। आईएसआईएस से जुड़े एक मॉड्यूल से संबंधित साकिब नाचन मामले की चल रही जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कई जिलों और राज्यों में 40 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। साकिब नाचन को पहले आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में उसकी कथित सक्रिय संलिप्तता के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने गिरफ्तार किया था। निदेशालय ने पड़गा बोरीवली क्षेत्र के निकट मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग, प्रयागराज, दमन और रत्नागिरी में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियानों के दौरान 9,70,00,000 रुपए से अधिक की चल संपत्ति, स्वर्ण आभूषण और गोल्ड बुलियन जब्त और बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आरोपी और संदिग्धों से जुड़े 25 बैंक खातों पर लेनदेन की रोक लगा दी गई है। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले दस्तावेज, साहित्य और डिजिटल उपकरण जैसी कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले से जुड़े लोग अत्यधिक कट्टरपंथी गुट आईएसआईएस के मॉड्यूल का हिस्सा थे। ये लोग आतंकी मॉड्यूल के अभियानों को जारी रखने के लिए लोगों की भर्ती, प्रशिक्षण, हथियारों तथा विस्फोटकों की खरीदारी और धन उगाही में कथित रूप से संलिप्त थे। मामलों में आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं निर्वाचन आयोग और जल क्रीड़ा गतिविधियां। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल कुमार ने 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे फॉर्म 6 अनिवार्य घोषणा पत्र के साथ अपने संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी को जमा करें या निर्वाचन आयोग के पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। समय पर फॉर्म 6 जमा करने से मतदाता सूची में नाम शामिल होने में सहायता मिलेगी। हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं से बिना विलंब आवेदन करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया गया है। सहायता के लिए मतदाता अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम के अनुरूप कोलकाता उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति सर्किट बेंच पोर्टब्लेयर ने अंडमान एवं निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कल सर्किट बेंच परिसर में 4वीं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति शंपा दत्त पॉल न्यायाधीश कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा की गई। उनके साथ अधिवक्ता डी एलंगू पीठ के सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। कुल 4 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 3 मामलों का निपटारा किया गया। यह आयोजन वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और विशेषकर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दूरदराज के क्षेत्रों में सभी के लिए न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वीप समूह द्वारा कल जिला न्यायालय भवन पोर्टब्लेयर, एडीआर केंद्र प्रयास पोर्टब्लेयर तथा उपमंडलीय न्यायालय परिसरों मायाबंदर, डिगलीपुर और कैम्बल बे में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल 354 वाद पूर्व मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों के 674 लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किया गया। इनमें से कई बैंक और बीएसएनएल वसूली मामलों का निपटारा किया गया, जिससे संबंधित पक्षों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। आपराधिक मामलों के निपटारे से विभिन्न स्थानों पर जुर्माने की राशि वसूल की गई। मायाबंदर और डिगलीपुर में भी पीठों का गठन कर अनेक मामलों का समाधान किया गया। पोर्टब्लेयर, मायाबंदर और डिगलीपुर में आयोजित पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन संबंधित न्यायिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया गया। पर्यटन निदेशालय ने फिस लैंडिंग चिट्टी के पास न्यू वंडूर बीच पर ग्लास बॉटम बोट और पैरासेलिंग जैसी जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने की योजना की घोषणा की है। इसे लेकर स्थानीय निवासियों की लंबे समय से मांग रही है। इसका उद्देश्य साहसिक और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना तथा पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। इस कदम से क्षेत्र के निवासियों के लिए आजीविका के नए अवसर बनने की भी संभावना है। ग्लास बॉटम बोट और पैरासेलिंग के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक पर्यटन निदेशालय के वाटर स्पोर्ट्स अनुभाग में आवेदन जमा कर सकते हैं। दक्षिण अंडमान में अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के कारण आज दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक डॉलीगंज एयरपोर्ट और वीआईपी रोड पर अस्थायी यातायात नियंत्रण और आवागमन बाधित रहेगा। आम नागरिकों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू की गई है। आपातकालीन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कोई भी मार्ग पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जाएगा और सामान्य यातायात यथावत जारी रहेगी। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक संबंधित यातायात नियंत्रण कक्ष और अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय दक्षिण अंडमान के अनुसार ओल्ड पुलिस स्टेशन सैटेलाइट कॉलोनी से एंडल बस्ती होते हुए ऑस्टिनाबाद मुख्य सड़क तक मौजूदा सड़क के पुनर्निर्माण के कारण कल से 23 दिसंबर तक 9 दिनों के लिए सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस अवधि में वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर ओलंपिक मंच से गृहमंत्री अमित शाह ने दिया संदेश, कहा जहां कभी गोलियां गूंजती थी वहां अब स्कूलों की घंटियां बजती हैं। प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई में आईएसआईएस से जुड़े साकिब नाचन केस में 40 ठिकानों पर छापेमारी और 25 बैंक खाते फ्रीज किए गए। निर्वाचन अधिकारी एल कुमार ने द्वीपों के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों से फॉर्म 6 अनिवार्य घोषणा पत्र के साथ जमा करने की अपील की और पर्यटन निदेशालय ने न्यू वंडूर बीच पर ग्लास बॉटम बोट और पैरासेलिंग गतिविधियां शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।